एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है मुकुंद राव की इंडियाज ग्रेटेस्ट माइंड्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, फिलोसोफर्स एंड सावेंट्स।
वाकई एक कमाल की किताब है।
हाँ बिल्कुल, ये भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली विचारकों को एक अलग ही नजरिए से देखती है। सिर्फ उनकी शिक्षाएं नहीं बल्कि उनके जीवन, उनके संघर्ष, यहाँ तक कि उनके विद्रोहों को भी सामने लाती है।
अच्छा,
और शायद यही बात इसे आज के समय में इतनी रेलेवेंट बनाती है ना। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब बस पुरानी बातें मानना या श्रद्धा रखना,
हाँ, परंपरा निभाना टाइप।
बिल्कुल, लेकिन राव हमें याद दिलाते हैं कि भाई ये जो हमारी विरासत है ये तो सवालों से बनी है, असहमतियों से, कभी कभी तो सीधी बगावत से।
अच्छा,
तो ये किताब इन महान लोगों को सिर्फ पूजनीय मूर्तियों की तरह नहीं देखती बल्कि असल इंसानों की तरह। जटिल, क्रांतिकारी, हमारी आपकी तरह के इंसान।
तो किताब में गोता लगाने से पहले जरा लेखक के बारे में बात कर लें। मुकुंद राव कौन है ये और क्यों लिख रहे हैं इस विषय पर?
मुकुंद राव पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे।
ओके।
और उन्होंने अपनी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को समझने में लगाया है।
ओके।
और दिलचस्प बात यह है कि उनकी बैकग्राउंड लिटरेचर में है, साहित्य में। तो वो इन विचारकों को सिर्फ फिलोसोफर की तरह नहीं देखते।
अच्छा, मतलब उनकी कहानियों, उनके लिखने का स्टाइल, इन सब पर भी ध्यान देते हैं।
एग्जैक्टली, वो सिर्फ सिद्धांतों का विश्लेषण नहीं करते बल्कि उन कहानियों में जो ड्रामा है, जो मानवीय पहलू है, उसे भी पकड़ते हैं। और उनका जुड़ाव सिर्फ किताबी नहीं है। उन्होंने रमण महर्षि और यूजी कृष्णमूर्ति जैसे 20वीं सदी के कुछ मतलब बहुत ही गूढ़ और रेडिकल विचारकों पर भी लिखा है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका नजरिया एक क्रिटिकल इनसाइडर का है? मतलब वो परंपरा का सम्मान करते हैं लेकिन आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानते।
हाँ, ये बढ़िया तरीका है कहने का, क्रिटिकल इनसाइडर। वो परंपरा को गहराई से समझते हैं पर साथ ही किसी एक पंथ या विचार से बंधे नहीं हैं।
तो वो निष्पक्ष होकर देख पाते हैं।
हाँ, इसी वजह से वो याज्ञवल्क्य के जैसे प्राचीन ऋषि से लेकर अंबेडकर जैसे आधुनिक विचारक तक सबको सहानुभूति और एक तेज एनालिटिकल नजर दोनों से देख पाते हैं।
समझ गया। तो फिर ये किताब इंडियाज ग्रेटेस्ट माइंड्स आखिर है क्या चीज? 3000 साल का इतिहास, ये तो बहुत बड़ा कैनवस है।
है तो, ये एक महत्वाकांक्षी किताब है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मेन मकसद है भारत के लगभग 20 सबसे प्रभावशाली विचारकों को मिथकों और जो जरूरत से ज्यादा श्रद्धा होती है ना,
कहाँ, जो हम अक्सर बना लेते हैं,
बिल्कुल उस परत से बाहर निकालना। राव उन्हें ऐसे दिखाते हैं जैसे वो जीते जागते इंसान थे, सोचने वाले, बहस करने वाले और कभी कभी तो एक दूसरे से तीखा मतभेद रखने वाले भी।
मतलब ये इस आइडिया को चैलेंज करती है कि भारतीय दर्शन बस एक सीधी साधी स्मूथ लाइन में चला है।
हाँ बिल्कुल, राव दिखाते हैं कि ये रास्ता तो उबड़ खाबड़ है, इसमें दरारें हैं, बहसें हैं, क्रांतिकारी मोड़ हैं। किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है।
कहाँ से कहाँ तक?
उपनिषदों के याज्ञवल्क्य से शुरू होकर फिर बुद्ध और महावीर के वो आंदोलन जो वैदिक परंपरा से अलग थे।
अच्छा।
फिर आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, फिर मध्यकाल के भक्ति कवि जैसे बसव और कबीर, उनका वो दिल से निकला विद्रोह, फिर गुरु नानक का सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया,
और फिर आधुनिक काल भी आता है।
हाँ बिल्कुल, फिर किताब 19वीं और 20वीं सदी के उन दिग्गजों पर आती है जिन्होंने उपनिवेशवाद, मॉडर्निटी, सामाजिक अन्याय जैसी चुनौतियों का सामना किया। गांधी, अम्बेडकर, टैगोर, श्री अरबिंदो, रमण महर्षि, जे कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति, ये सब नाम हैं।
तो ये सिर्फ जीवनियां नहीं हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ही एक तरह से सच, आजादी और जिंदगी के मतलब की जो बारहमासी खोज है ना, उसकी एक बड़ी आपस में जुड़ी हुई कहानी है।
तो संक्षेप में कहे तो राव भारतीय आध्यात्मिकता के उस मोनोलिथिक आइडिया को तोड़ते हैं। मतलब ये कि कोई एक चीज नहीं है ये।
हाँ, वो दिखाते हैं कि ये एक जीवंत, तर्क करने वाली और बेहद विविध परंपरा है। जैसा अमर्त्य सेन ने कहा था, भारत की आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन।
अच्छा, हाँ।
ये किताब दिखाती है कि सोचने का कोई एक भारतीय तरीका नहीं है बल्कि यहाँ तो विचारों का एक पूरा गुलदस्ता है, कुछ एकदम उलट, कुछ एक दूसरे के पूरक, कुछ साथ साथ मौजूद।
चलिए, तो इस गुलदस्ते के कुछ खास फूलों को, मतलब कुछ खास विचारकों को करीब से देखते हैं। शुरुआत प्राचीन काल से करते हैं। याज्ञवल्क्य, उपनिषदों के ऋषि, राव उन्हें कैसे पेश करते हैं?
राव याज्ञवल्क्य को सिर्फ वैदिक ज्ञान रटने वाले ऋषि की तरह नहीं देखते, वो उन्हें एक फिलोसॉफिकल जायंट मानते हैं, एक ऐसा विचारक जिसने फोकस को बाहरी कर्मकांडों से हटाकर अंदर की खोज यानी आत्मविद्या पर ला दिया।
और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नैति नैति का, ये नहीं ये नहीं।
नेति नेति ये क्या है? सुनने में बड़ा रहस्यमय लगता है।
है भी, ये परम सत्य यानी ब्रह्म को समझने का एक क्रांतिकारी तरीका है। इसमें आप ये नहीं बताते कि सत्य क्या है, बल्कि ये बताते जाते हैं कि वो क्या नहीं है।
अच्छा, मतलब हर परिभाषा को नकारते जाना।
हाँ, क्योंकि परम सत्य हमारी भाषा और हमारी सोच की सीमाओं से परे है। ये अपने आप में एक जबरदस्त इनसाइट थी उस समय के लिए।
वाकई, लेकिन फिर कुछ ऐसे विचारक भी आए जिन्होंने वैदिक परंपरा से, आप कह सकते हैं, ब्रेक लिया, जैसे बुद्ध और महावीर।
बिल्कुल, और राव उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं मानते, बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधारक के तौर पर भी देखते हैं। बुद्ध को वो एक तरह से प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह दिखाते हैं।
अच्छा,
कैसे?
उनके जो चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं, राव उन्हें इंसानी दुख दुख का एक व्यावहारिक निदान और इलाज मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका स्थायी आत्मा अनात्मा के विचार को नकारना और जाति व्यवस्था की आलोचना, ये उस समय के ब्राह्मणवादी वर्ल्ड व्यू पर सीधी चोट थी।
और महावीर, जैन धर्म तो अपनी अहिंसा और तपस्या के लिए जाना जाता है।
हाँ, राव महावीर के अहिंसा पर जोर देते हैं, और ये सिर्फ शारीरिक अहिंसा नहीं बल्कि मन वचन कर्म तीनों लेवल पर। फिर अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद।
अनेकांतवाद
यानी सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई एक नजरिया ही पूरा सच नहीं बता सकता। ये सोच हर तरह की कट्टरता, हर तरह के एब्सोल्यूट थिंकिंग को चैलेंज करती है।
इन गैर वैदिक धाराओं के बाद फिर आदि शंकराचार्य का समय आता है, अद्वैत वेदांत के महान विचारक। राव उनके बारे में क्या कहते हैं?
राव शंकराचार्य की प्रतिभा को पूरी तरह मानते हैं। उन्होंने अद्वैत वेदांत यानी ये आइडिया कि आत्मा आत्मन और ब्रह्म असल में एक ही हैं, को एक सिस्टमेटिक फिलॉसफी बनाया। ये बहुत बड़ा काम था, लेकिन
लेकिन कुछ आलोचना भी है।
हाँ, राव एक आलोचनात्मक पक्ष भी रखते हैं। वो शंकराचार्य के ऊंचे दार्शनिक विचार और उनके जो सामाजिक विचार थे, खासकर जाति व्यवस्था को लेकर, उनके बीच एक तनाव को हाईलाइट करते हैं।
अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, ये दिखाता है कि कितने भी महान विचारक क्यों ना हो, वो भी अपने समय और समाज के विरोधाभासों से अछूते नहीं रहते। ये उन्हें थोड़ा और मानवीय बनाता है, सिर्फ पूजनीय नहीं।
ये तो हुई ज्ञान मार्ग की बातें, लेकिन फिर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन आया, जो शायद ज्यादा इमोशनल, ज्यादा दिल से जुड़ा था।
एग्जैक्टली, और राव इस धारा को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। वो हमें कर्नाटक के 12वीं सदी के समाज सुधारक बसव से मिलवाते हैं। उनकी जो वचन कविताएं थी,
हाँ सुना है उनके बारे में,
वो सीधी सरल भाषा में जाति व्यवस्था, मंदिर पूजा, पुरोहितों का जो दबदबा था, उस पर सवाल उठाती थीं। उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस और सीधी सरल भक्ति पर जोर दिया।
और कबीर, उनका नाम तो आज भी कितना रेलेवेंट है।
कबीर को राव परम मूर्ति भंजक मतलब अल्टीमेट आइकनोक्लास्ट मानते हैं, एक जुलाहा जिसने अपनी तीखी बेबाक एकदम देसी भाषा में लिखी कविताओं से हिंदू और मुसलमान दोनों के पाखंड पर हमला किया। कबीर का मैसेज था एक निराकार यूनिवर्सल सच का, जो धर्म के सारे लेबलों से परे था। उनकी आवाज में एक गजब की निडरता थी।
और इन क्रांतिकारी आवाजों के बाद गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, उन्हें राव कैसे देखते हैं?
गुरु नानक को राव एक महान सिंथेसाइजर मतलब समन्वय करने वाले और करुणा से भरे विजनरी के रूप में देखते हैं। वो बताते हैं कि नानक की शिक्षाओं में हिंदू भक्ति और इस्लामी सूफीवाद दोनों के तत्व मिलते हैं, पर उन्होंने इनसे मिलकर एक बिल्कुल यूनिक रास्ता बनाया।
जिसका आधार क्या था?
आधार था निस्वार्थ सेवा यानी सेवा, सभी इंसानों की बराबरी और एक ईश्वर एक ओंकार का सिमरन या याद। और फिर हम आते हैं आधुनिक भारत में। यहाँ चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं, उपनिवेशवाद, मॉडर्निटी, सोशल इनजस्टिस। राव यहाँ गांधी, अम्बेडकर और टैगोर जैसे बड़े नामों पर फोकस करते हैं।
गांधी और अंबेडकर, इनके बीच तो विचारों का टकराव बहुत मशहूर है, खासकर जाति को लेकर। राव इसे कैसे हैंडल करते हैं?
राव इस टकराव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो इसे टालते नहीं, बल्कि इसे आधुनिक भारत को समझने के लिए जरूरी मानते हैं। वो गांधी की राजनीति की जो आध्यात्मिक जड़ें हैं, सत्य और अहिंसा, उन्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उनकी गहरी आध्यात्मिक खोज का हिस्सा बताते हैं।
और उनकी वो स्वराज की कल्पना,
हाँ, औद्योगिक सभ्यता की उनकी आलोचना और स्वराज यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन, इस पर भी बात करते हैं।
और अंबेडकर?
माओ बी आर अंबेडकर को गांधी के सबसे ताकतवर वैचारिक चैलेंजर के रूप में रखते हैं। वो अंबेडकर की हिंदू धर्म की जो तीखी आलोचना है उसे पूरा स्पेस देते हैं। अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक अभिन्न और दमनकारी हिस्सा है। उनकी पूरी बौद्धिक यात्रा, जो आखिर में बौद्ध धर्म अपनाने पर खत्म हुई, उसे राव लाखों दलितों के लिए राजनीतिक और आध्यात्मिक मुक्ति के एक बेहद गहरे और जरूरी कदम के तौर पर देखते हैं। ये गांधी अंबेडकर डिबेट आज भी अंशुलजी है कई मायनों में।
ये वाकई एक बहुत अहम पॉइंट है। और टैगोर, उन्हें तो हम ज्यादातर कवि गुरु के रूप में जानते हैं।
हाँ, लेकिन राव टैगोर को राष्ट्र की अंतरात्मा की आवाज की तरह देखते हैं। वो टैगोर की जो संकीर्ण एग्रेसिव नेशनलिज्म की आलोचना थी और उनका जो यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म का विजन था, उस पर रोशनी डालते हैं। विश्व भारती उसी विजन का प्रतीक था।
और आखिर में 20वीं सदी के दो और बड़े अनोखे नाम हैं, रमण महर्षि और जे कृष्णमूर्ति। ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं।
हैं भी बिल्कुल अलग। रमण महर्षि वो सादगी और मौन के ऋषि थे। राव उनके आत्म अन्वेषण यानी आत्मविचार के सीधे रास्ते पर फोकस करते हैं, जो बस इस एक सवाल में सिमटा है, मैं कौन हूं।
अच्छा,
ये बुद्धि को, इंटेलेक्ट को बाईपास करके सीधे अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करने का एक तरीका है, बहुत डायरेक्ट।
और जे कृष्णमूर्ति, वो तो और भी ज्यादा रेडिकल लगते हैं।
ओ बिल्कुल, जे कृष्णमूर्ति, जे के तो मतलब पूरी तरह से लीक तोड़ने वाले थे। उन्होंने वो स्टार ऑफ द ईस्ट वाला संगठन भंग कर दिया और लोगों से कहा कि भाई सारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज को रिजेक्ट कर दो, मेरी भी,
अपनी अथॉरिटी को भी।
हाँ, उनका मूल संदेश था, सत्य एक पथरहित भूमि है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड।
सत्य एक पथरहित भूमि है, इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में गहरा है।
इसका मतलब है कि सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता, कोई मेथड, कोई धर्म, कोई गुरु हो ही नहीं सकता। आपको खुद बिना किसी सहारे के, बिना अतीत की कंडीशनिंग के डायरेक्ट देखना होगा। राव यहां संक्षेप में यूजी कृष्णमूर्ति का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने तो पूरी आध्यात्मिक खोज के कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया था।
अरे बाप रे, तो इस पूरी यात्रा से, इतने सारे विचारकों से गुजरने के बाद कुछ मेन थीम्स, कुछ बड़े संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से?
सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल मैसेज तो यही है कि विद्रोह या कह लीजिए असहमति, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का इंजन रहा है। बुद्ध से लेकर अंबेडकर और जे कृष्णमूर्ति तक, असली प्रोग्रेस हमेशा सवाल उठाने और जो स्थापित मान्यताएं हैं उन्हें चैलेंज करने से आई हैं। चुपचाप मान लेना शायद ठहराव है।
ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा?
दूसरा ये कि सच तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है। याज्ञवल्क्य और शंकर का ज्ञान मार्ग है, कबीर और बसव का भक्ति मार्ग है, गांधी का कर्म मार्ग है, रमण का मौन आत्मजागरूकता का मार्ग है, और तो और जेके और यूजी का सब कुछ नकारने का मार्ग भी है। ये जो डाइवर्सिटी है, यही भारतीय सोच की रिचेस, उसकी समृद्धि है।
तीसरा अहम सूत्र क्या लगता है?
तीसरा है आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय का जो गहरा अटूट रिश्ता है, खासकर बसव, नानक, गांधी और अम्बेडकर के लिए। सत्य की खोज समाज में बराबरी और इंसानी गरिमा की लड़ाई से अलग थी ही नहीं। जाति जैसी व्यवस्था उनके लिए सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल और मॉरल इवल थी।
मतलब सच्ची आध्यात्मिकता आपको समाज से काटती नहीं, जोड़ती है।
राव का इशारा तो यही लगता है। और चौथा मैसेज है संगठित धर्म और सत्ता के ढांचों की लगातार आलोचना। कबीर ने जिस तरह पाखंड पर चोट की, या जे कृष्णमूर्ति ने जिस तरह कहा कि सत्य के लिए कोई रेडीमेड रास्ता नहीं है, ये किताब इंडिविजुअल इंक्वायरी, व्यक्तिगत खोज और विवेक को ग्रुप थिंकिंग या डॉग्मा से ऊपर रखती है।
और एक आखिरी बात जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, वो है इन महान हस्तियों का मानवीकरण। राव जानबूझकर उनके चारों ओर जो देवत्व का प्रभामंडल बना दिया जाता है उसे हटाते हैं।
हाँ,
उनके संघर्ष, उनके अंदर के विरोधाभास, जैसे शंकर का दर्शन और उनका सामाजिक रूढ़िवाद, इनको सामने लाते हैं। इससे वो ज्यादा रियल, ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं।
बिल्कुल, किताब में ऐसे बहुत से विचार हैं जो सीधे हिट करते हैं। कुछ कोट्स या सार विचार अगर हम शेयर करें?
हाँ जरूर। जैसे याज्ञवल्क्य के दर्शन का निचोड़, परम सत्य को केवल उसे नकार कर समझा जा सकता है जो वो नहीं है। नेति नेति ये याद दिलाता है कि सबसे गहरी सच्चाई शायद शब्दों में, पकड़ में आने वाली चीज नहीं है।
सही। या फिर अंबेडकर की वो सीधी सपाट बात, जाति को बनाए रखना, न्याय और मानवता के आधार को नकारना है, सच्ची मुक्ति जाति के विनाश में है। ये जाति को सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक बुनियादी नैतिक और आध्यात्मिक फेलियर की तरह दिखाता है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है।
और जे कृष्णमूर्ति का वो फेमस कोट, सत्य एक पथरहित भूमि है, आप किसी भी मार्ग, धर्म या संप्रदाय से उस तक नहीं पहुंच सकते, ये तो जैसे सारे ऑर्गेनाइज्ड रास्तों और गुरु सिस्टम पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, स्पिरिचुअल फ्रीडम की अल्टीमेट डिक्लेरेशन।
और आखिर में खुद मुकुंद राव की किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है उसे भी याद रखना चाहिए, भारत के महान विचारक एकांतवासी संत नहीं बल्कि हट धर्मिता, अज्ञानता और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने वाले जोशीले विद्रोही थे। यह हमें इन थिंकर्स को सिर्फ उनके ज्ञान या शांति के लिए नहीं बल्कि उनकी हिम्मत, उनके करेज और उनके रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट के लिए भी अप्रिशिएट करने को कहता है।
तो ये सब गहरे विचार हैं, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या काम, मतलब हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, सबसे डायरेक्ट एप्लीकेशन तो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। क्या हम अपने आसपास की बातों, समाज के नियमों या जो अथॉरिटीज कहती हैं उन पर सवाल उठाते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य ने, बुद्ध ने, अंबेडकर ने उठाए? अपने ही बिलीव्स पर सवाल करना।
और रमन महर्षि का वो सिंपल सा सवाल, मैं कौन हूँ, ये शायद आज की जो इतनी भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें दो पल रुककर खुद से पूछने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, या बुद्ध की माइंडफुलनेस टेक्निक्स।
बिल्कुल, स्ट्रेस कम करने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। और रामकृष्ण परमहंस का वो आइडिया, जितने मत उतने पथ, ये हमें दूसरों के विश्वासों के प्रति ज्यादा टॉलरेंट, ज्यादा ओपन बना सकता है। आज के माहौल में इसकी कितनी जरूरत है।
गांधी और अम्बेडकर की बात से ये समझ आता है कि हमारी अपनी वेल बीइंग समाज की वेल बीइंग से अलग नहीं है। कंपैशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक्शन में दिखना चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने में।
और हाँ, एक और बात, जो लोग किसी तरह की स्पिरिचुअल सर्च या खोज में हैं, उनके लिए जे कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति का पर्सपेक्टिव एक तरह की लिबरेशन भी दे सकता है।
कैसे?
वो ये सवाल उठाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लगातार कुछ पाने की जो कोशिश है यही असल में बाधा है? क्या पता शांति कहीं और नहीं, यही मौजूद हो अगर हम ये तलाश न छोड़ दें।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे सरप्राइजिंग बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये एहसास है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कोई बंद जमी हुई चीज नहीं है। ये एक लाइव, डायनामिक, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी, लेकिन हमेशा इवॉल्व होने वाली बातचीत है। और इस बातचीत में सवाल उठाना, असहमत होना, ये कोई पाप नहीं है बल्कि एक जरूरी, बल्कि पवित्र काम है।
और मेरे लिए इन महान हस्तियों का मानवीकरण, ये समझना कि वो देवता नहीं थे बल्कि हमारे जैसे इंसान थे।
हाँ,
बेहद प्रतिभाशाली, साहसी, पर उनमें भी कमियां थीं, विरोधाभास थे। उन्होंने अपने लिए सोचने की हिम्मत दिखाई। उनकी महानता शायद उनके दिए गए फाइनल आंसर्स में उतनी नहीं है जितनी उनके पूछे गए सवालों की गहराई और उनकी निडरता में है। ये किताब हमें अपनी विरासत को अंधी भक्ति से नहीं बल्कि एक क्रिटिकल एंगेजमेंट और पर्सनल एक्सप्लोरेशन के लेंस से देखने के लिए इंस्पायर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।